ओशो टॉक्स प्रेजेंट्स पॉडकास्ट्स सीजन 2 एपिसोड 7। वेलकम टू कोशो टॉक्स पॉडकास्ट। कोशो टॉक्स एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सुनते हैं कश्मीर के इन्फ्लुएंसिंग लोगों की कहानियां, और हमारी कोशिश है कि हम कश्मीर के इन इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशनल ज़हीन काबिल और वो लोग जो अपने काम, हुनर, फन और काबिलियत से कश्मीर का नाम आगे लेके जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी आवाज़ आप तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर की सनफ़ पूरी दुनिया में जानी जाती है। और कश्मीर में एक बहुत कदीम सनफ़ हुआ करती थी, पोट्री। आज भी है लेकिन मरने की कगार पे। पोट्री यानी के करालकुम, मिट्टी के बर्तन बनाना या मिट्टी की चीज़ें बनाना। आज की जनरेशन पोट्री को हकारत की नज़र से देखती है, लेकिन हकीकत में पोट्री एक बहुत अच्छा काम है। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीर में पोटर्स बहुत कम होते जा रहे हैं और पोट्री काम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसी बीच आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है कश्मीर की एक यंग पोटर जो कि एक इंजीनियर भी हैं, साइमा शफी। दुनिया इन्हें करालकुर के नाम से जानती है। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। वेलकम टू द शो।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
यू आर वेलकम मैम। कोशो टॉक्स पॉडकास्ट पे हमारे साथ तरह तरह के प्रोफेशन के लोग जुड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम उनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। कोई ऑथर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, या फिर कोई भी प्रोफेशन जो आजकल की जनरेशन जिसे समझती है। वकील एक केस लड़ता है या फिर डॉक्टर किसी का इलाज करता है, लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत कम वाकिफ है पोटर्स से। कुछ लोग जो पुराने जैसे हमारे बड़े फैमिलीज़ में होते हैं, जिनकी एज 50 से ऊपर होती है, मे बी वो पोटर्स को अच्छी तरह से समझते या जानते होंगे। तो लेकिन लोगों को पता नहीं है कि पोटर्स जो हैं एक्चुअली कश्मीर की एक बहुत बड़ी एक इमेज हुआ करती थी। कश्मीर में बहुत सारे पोटर्स हुआ करते थे, और आजकल लोग सिर्फ डिजिग्नेटेड जो कुम्हार होते हैं, जो कराल होते हैं, उन्हीं को समझते हैं कि बस जी ये पोटर्स हैं, इनके अलावा कोई पोटर नहीं बन सकता। और आप बताएं कि आप बचपन से ही आपके अंदर ये एक विश थी, एक ख्वाहिश थी कि आप पोटर बनना है आपको, या फिर आउट ऑफ नोवेयर आपके अंदर से कहीं से अचानक से वो आ गया कि यार मुझे कराल कुम करना है, मुझे कुम्हार बनना है?
पॉटर मैं बचपन से नहीं हूँ, पॉटर मैं अचानक बनी, लेकिन आर्टिस्ट बचपन से हूँ। आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन बचपन से था। आई वॉज इन टू पेंटिंग, आई वॉज इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई वॉज ऑलवेज अ मल्टी टास्क पर्सन। स्टडीज के अलावा जो भी एक्टिविटीज मिलती थी करने को, आई यूज टू डू दैट। And eventually, studies continue. We have only one thought in life, na, ki 10th karna hai, 12th karna hai, then you have to get into some professional course or for job, and that's the settlement of life. But jo ek artist hota, I believe the art never dies inside her. So that was the same case with me. Even I was in 12th or I was at university level or college level, even during the job also, मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी आर्ट फॉर्म के साथ करती रहती थी, लाइक क्रोशे करती थी, पेंटिंग करती थी, कैंडल्स बनाती थी। बट ये पॉटरी का मुझे बिल्कुल भी एक आइडिया नहीं था। सिर्फ इतना पता था मिट्टी के बर्तन होते हैं जो मुझे बचपन से पसंद थे, और दूसरा ये था कि जहाँ जहाँ पे भी मुझे ये बर्तन वगैरह ये चीज़ें मिलती थी, आई यूज टू गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। लेकिन एक अलग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स पॉटरी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी मेरे सोल में। एंड उसका ये वन ऑफ द रीजंस ये भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये लगता है कि व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ फॉर अ फैमिली ट्रिप, आई हैपन टू यू नो विजिट वन विलेज जहाँ पॉटरी करते थे, और वहाँ पे मेरे को एक पॉट बहुत पसंद आया। सो दैट वाज फर्स्ट जो मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे एक फेस्ट हुआ, वहाँ पॉटर लाया गया था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पॉटरी की, एंड आई रियली लव्ड यू नो प्लेइंग विद द मड और लगते, मतलब बचपन में मैं मिट्टी के साथ बहुत खेला करती थी। मतलब मैं सुदान सब बनावा या बाहर मिट्टी का कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती थी। सो आई वाज अट्रैक्टेड टू मड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ। फिर फाइनली मतलब इवन इन टू द जॉब ऑल्सो, मैंने कहा ना एक आर्टिस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है किसी और चीज़ से, डिस्पाइट हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, बींग एन इंजीनियर, वो भी एक आर्ट ही है, इंजीनियरिंग करना और फिर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली में फील्ड पे करना. सो आई वॉज देर वॉज सम सडन डाउनफॉल्स इन माई लाइफ एंड आई वॉज इन टू एक्यूट डिप्रेशन. आई वॉज ऑन मेडिकेशन एंड आई वॉज फाइंडिंग सम सोलेस टू यू नो ट्रीट माई सेल्फ माई एट माई ओन बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन फॉर ऑल द टाइम. मतलब मैं इस चीज को गिव अप करना चाहती थी बट आई वॉन्टेड टू ट्रीट माई सेल्फ. सो आई बिलीव इन सेल्फ हेल्प पहले से. मुझे ये लगता है कि इंसान इतना स्ट्रांग है कि वो खुद को खुद की मदद खुद करनी चाहिए. तो उसमें मुझे लगा कि मुझे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जो मेरे इंटरेस्ट का हो. एंड देयर आई लैंडेड अप इनटू पॉटरी. सर्च करके फाइनली आई सर्च्ड अबाउट पॉटरी. इतना सर्च किया कि फाइनली आई गॉट इट कि इट इज़ अ प्रोफेशनली डन कोर्स जो कि मुझे कश्मीर में नहीं कहीं देखने को मिला कि सिखाया जाता है. एंड आई वेंट टू बैंगलोर और वहाँ मैंने पॉटरी सीखी और वहाँ से एक मिशन काइंड ऑफ लाइफ में बना और वहाँ से एक पॉटर बन गई.
मैम सुन के खुशी हुई कि आप बींग एन इंजीनियर पोट्री में इतना इंटरेस्ट रखती हैं और आपने अपने एक स्टूडियो भी बनाया हुआ है. वैसे पूरा कश्मीर आपको करालकुर के नाम से जानता है. उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप और जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं या फिर वो सब लोग जो पोट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं ये काम, उनके लिए आसानियाँ होंगी, आसाइशें होंगी आपकी वजह से. और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप कश्मीर में एक जो एक चीज़ हमसे रह गई थी आप उसको अभी खींच रहे हो, लेके आ रहे हो वापस, ताकि आने वाले वक्त में कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा पोटर्स हों. और सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएंगे, ये एक कला है, एक आर्ट है और आर्ट कभी नहीं मरती. जैसा आपने पहले ही कहा कि आर्ट कभी नहीं मरती. एंड हम आपका शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने कश्मीर के एक जो एक हमारी पहचान थी उसको ज़िंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप. मैम बात करते हैं कश्मीर में पोट्री की. पुराने ज़माने में 90s या 90 से पहले के जो लोग हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, तकरीबन कह लें कि 100% लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे. वो चाहे खाना पकाने की बात हो या फिर खाना परोसने की या फिर खाना खाने की, कुछ भी हो मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के बर्तनों की जो ये यूजेज है, इस्तेमाल है, बहुत कम हो चुका है. कम तो ठीक है लेकिन शहर के जो लोग हैं कहीं पे किसी का एक शौक होता है, कोई एक लाइक एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक ख्वाहिश टाइप होती है कि यार मुझे मिट्टी का बर्तन अच्छा लगता है, फिर लाइक शो पीस लोग रख देते हैं उसको. फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं 1%, 2% या फिर मैक्सिमम अप टू 5% के जो लोग आज भी मिट्टी के बर्तन हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं. पहले जो लोग हुआ करते थे शहर में या फिर देहात में, हर जगह पे मिट्टी खुलेआम मिला करती थी. मैं खुद पर्सनली देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो फीमेल यानी कि छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, वो अपना बचपन मिट्टी में ही जो है वो स्पेंड करते हैं. या फिर कह लें कि स्कूल जाने की एज तक वो मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं. और शहर में तो खैर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, शहर में कहीं पे आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पे बच्चा जाके मिट्टी में खेल सकता है. और पेरेंट्स भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, आप क्यों कीचड़ में खेल रहे हो, मड में खेल रहे हो. खैर कहने का मतलब ये है कि मैम कश्मीर में ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है. और ऑन द अदर हैंड कश्मीर में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लॉ कराया जाता है, MBA कराया जाता है, BBA कराया जाता है. अभी तो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, म्यूज़िक वाले जो कश्मीर यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पे बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल्स या फिर कॉलेजेस जो भी हैं, ऑलमोस्ट हर तरह का जो एक सब्जेक्ट है, एक्सट्रीम है, वहाँ पे अवेलेबल है, बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं वो चीज़. लेकिन आपने कहा कि आपने पोट्री बेंगलोर से जाके सीखी है. मैम वो चाहे कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी हो, वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक वहाँ पे तरह तरह के सोच के लोग मौजूद ना हो, तरह तरह के प्रोफेशंस मौजूद ना हो, तरह तरह के जो है शोबे जिसे कह लें हम, वो ना हो. तो अगर आपके पास लॉ है, MBA भी है, सब कुछ है, अगर आपके पास एक डॉक्टर नहीं है आपकी सोसाइटी में, आपके माशरे में, आपके समाज में, आपके स्टेट में, तो लोग सब कुछ कर लेंगे लेकिन जब बीमार होंगे तो उनके पास कोई फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि वो कैसे बचेंगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली सबके सब लोग मरते जाएंगे. तो कल को आपके जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़हीन जो आपके फ़नकार हैं वो जो है डॉक्टर ना होने की वजह से वो आप खो देते हो. तो लेमेंस लैंग्वेज में कहा जाए, कहते हैं कि आदमी आदमी का घोड़ा होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को उसकी मंजिल तक पहुँचाता है. तो मैम आप हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी पोट्री नहीं सिखाई जाती, ऐसे एक बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं होते कि वो अगर उनको पोट्री सीखनी है तो वो फिर चूज़ कर सके यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज लेवल पे। बाकी प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर में ऑलमोस्ट तकरीबन हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्ट्रीम के जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्कूल लेवल से एवं तो अवेलेबल हो जाती है। तो मैम इस पे आप हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर में कितनी कमी लगती है आपको कि हमारे पास होना चाहिए स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में पोट्री सीखने का एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम जहाँ पे बच्चे जाके चूज़ कर सकें, और कितना नुकसान उठा रही है इस टाइम पे आजकल की जनरेशन क्योंकि हमारे पास ये चीज़ जो नहीं है।
मैं मानती हूँ एग्जैक्टली इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉटरी, इट्स अबाउट एवरी आर्ट फॉर्म जो भी यहाँ पे है। यहाँ पे बस लिमिटेड एक मैंने कहा ना स्कूल टाइम पे भी मुझे एक लिमिटेड ऑप्शंस या मतलब कुछ ही जैसे पेंटिंग कर लिया या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कर लिया तो इतनी या एम्ब्रॉयडरी कर ली, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। एंड आई हैव सीन जब कोई किसी आर्ट फॉर्म में कोई नाम कमाता है या इसको एक फेमस एक फेम मिलता है तब जाके बाकी थॉट प्रोसेस एक आ जाता है दिमाग में कि वी शुड हैव इट एज अ लर्निंग कोर्स फॉर आर चाइल्ड और चिल्ड्रन और एट स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल। सो हाँ मतलब ये ऑब्वियसली एट द बिगनिंग लेवल ऑफ स्कूल लेवल से होना चाहिए, ये एक आर्ट फॉर्म ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी, सो दैट जैसे म्यूजिक अवेलेबल है, पेंटिंग अवेलेबल है, गेम्स अवेलेबल है, तो एक बच्चा जो होता है एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग लेवल का हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को पेंटिंग पसंद है, इट्स नॉट नेसेसरी हर किसी को गेम्स पसंद है, इट्स नॉट नेसेसरी हर किसी को पॉटरी पसंद है, लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा सो मे बी वी कैन गेट डेफिनेटली हमारे पास एक वैरायटी ऑफ पॉटर्स मिल सकते हैं यहाँ से, और जो कि एक बिगनिंग लेवल से एक बिगनर्स जहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, माइंड डेवलप होता है, वहाँ से जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट बन सकते हैं वर्ल्ड वाइड पे। और दूसरा पॉटरी एक ऐसा आर्ट है जिससे मेंटल कैपेसिटी आप ये बोल सकते हैं कि आईक्यू लेवल जो इंसान का है, पेशेंस लेवल या एक बच्चे की मेंटल एबिलिटीज ज्यादा डेवलप होती है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, एंड इट्स अ वेरी मच स्ट्रेस बस्टर। बच्चों में भी स्ट्रेस होता है ऑफ होमवर्क, क्लास वर्क, पीयर प्रेशर, सो मच सोसाइटल प्रेशर्स, पेरेंटल प्रेशर, टीचर प्रेशर, मतलब बहुत कुछ होता है, वो अपने लेवल पे अपना एक एज ग्रुप का एक प्रेशर लेके चल रहे होते हैं। सेम गोज विद द कॉलेज लेवल, देन यूनिवर्सिटी लेवल, एंड देन द अदर पीपल हु आर ऑल अराउंड। सो दिस पॉटरी शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन because it plays an important role in life. और दूसरा ये है कि definitely जैसे मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, it's not everyone can afford to travel to Bangalore and to have this course because it's a very expensive course over there. So अगर हमारे पास यहाँ पे option available होता तो शायद मैं यहीं पे avail करती, but क्योंकि now I have learned pottery and it became you know famous altogether again in Kashmir, people started talking about pottery. ये तो पता है, it is a culture and heritage of Kashmir only. But मैंने कहा ना कि मैं तो बैंगलोर अपने लिए सीखने गई थी, but when I came back and I traveled to the places जो famous थे pottery के लिए, and I found it is at the verge of death. मतलब इनकी हालत ऐसी इतनी बुरी है, तो obviously जो चीज़ मर रहा है, जो चीज़ जिस चीज़ की हालत यहाँ खराब हो, वो क्यों कोई सीखना चाहे या वो क्यों उस पर क्यों कोई invest करना चाहे? But the ways I learned at Bangalore and the ways I know what pottery is all about, what skill it is, so just say मैंने अपना नाम खरालपुर रखा सो दैट एक पहचान मिले पॉटरी को वापस कश्मीर में, एंड डेफिनेटली इसको एक फेम मिला, और इट इज लाइक कि पीपल गवर्नमेंट इज थिंकिंग, इवन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर थिंकिंग टू टेक अप यू नो पॉटरी सीरियसली, वर्कशॉप्स कंडक्ट हो, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, सोसाइटी में अलग डिफरेंट यू नो एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हो, सो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो जाए। सो या इट इज इन द कार्ड्स एंड इट इज इन माय मिशन आल्सो, और आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट।
आपने एक अहम बात कही कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे बच्चों को सिर्फ वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, और हमारे पास सब्जेक्ट्स भी सिर्फ वही होते हैं जिस रेस में बच्चे दौड़ते हैं। मान लें कि कोई बच्चा MBBS के लिए सोच रहा है, कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने MBA करना है, कोई बच्चा कहता है कि मैंने ये वाला कोर्स करना है, वो वाला कोर्स करना है, लेकिन जो आर्ट है, जो पोट्री है, और पोट्री के अलावा भी जनरली बात करें जितने भी आर्ट होते हैं, बच्चों को चाइल्डहुड से ही इनके बारे में ना तो पढ़ाया जाता है, ना बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि पोट्री है क्या, कैसे होता है, इसमें फील्ड, इस फील्ड में स्कोप कितना है। तो मानते हैं कि गवर्नमेंट की यहाँ पे एक लापरवाही कह लें इसको, या फिर कमज़ोरी कह लें इसको, कोई बच्चा एमटेक करता है और कल को कहीं पे उसको लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकलता है तो वो वहाँ पे जाके फॉर्म भरता है, तो मुझे लगता है पर्सनली अगर एक बच्चा एमटेक करता है तो कल को अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई भी चीज़ शुरू कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही वो करे। तो ये माइंडसेट जो है ये हमारे सिस्टम ने, हमारे पेरेंट्स ने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा देखा फलाने के बेटे को 99% मार्क्स आए हैं, उसने MBBS में टॉप किया है, तुम्हें भी टॉप करना है। बच्चों को कभी ये नहीं कहा जाता बेटा जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा पैशन है तुम उसको फॉलो करो, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ठीक है मैम, मान लेते हैं इस बात को कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है एक फेलियर है, यहाँ पे बच्चों को आर्ट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, एक ऑप्शंस नहीं होते बच्चों के पास कि वो 10th 12th के बाद कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाके कि अपना पैशन फॉलो करें, वो चीज़ें करें जो जिसका उन्हें शौक़ होता है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जो जिसे कहेंगे कि जो जदी पोर्टर्स हैं, वो पोर्टर्स जिनके बाप दादा जो पोर्टर्स रहे हैं, जो कुम्हार होते हैं या फिर जो कराल काम करते आए हैं सदियों से, उनका फेलियर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इस टाइम पे। ठीक है एजुकेशन सिस्टम में आजकल के पोर्टर्स, आजकल के जो बच्चे हैं वो पोर्टर्स नहीं बन सकते, बहुत कम बनते हैं, या तो फिर लोगों को ये लगता है कि पोर्टर्स अगर वो बन जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा, कल को स्कोप नहीं है इस फील्ड के अंदर। ठीक है ये एजुकेशन जो सिस्टम फेलियर है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो जदी पोर्टर्स थे वो फेल हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो पोर्टर्स नहीं अपनी उस जो उनकी पीढ़ियों की, जो उनके बाप दादाओं की जो ये सनफ था, जो ये काम था, उसको आगे लेके नहीं जा रहे हैं। तो इसके फेलियर के पीछे आप हमें बताएं कि आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये क्यों फेल हो चुका है, वो पोर्टर्स क्यों अब आगे अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते या कंटिन्यू नहीं कर रहे।
सबसे पहला जो हमने कश्मीरियों ने ऐसी मनसत इनजस्टिस से करमस ये जो वरियो पेट सोशल टैबू जो उसके साथ है, मतलब अच्छे कशन आका अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो अच्छे वारिया मेहमान नवाज वां कंसीडर करनो, वारिया वार्म हार्टेड लुक वां कंसीडर करनो ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हिच वी आर, जो बे यकीन ते छस करन कि अच्छे हमसायन मदद करन, अच्छे वपरन मदद करन, अच्छे वपरन इज्जत करन, मगर अच्छे अख ये मतलब अख इविल आइसमंस ये के सोसाइटी मंस अच्छे डिफरेंशिएट करन सोसाइटी इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब अमिस कूता अमिस क्या इकोनॉमिक लेवल अमिस असल गाड़ अमिस असल मकान अमिस असल पलव तो यह कम जर्ज हंद, मतलब सोशल टैबूज एसोसिएटेड इस सेक्टर सत्या ज्यादा आव कर बे दम कह कि समझान डेवलपमेंट गई सो करो कुन कल्चर अडोप्ट मतलब कॉपी करो तो बनो डेवलप, मतलब सो गई अख तरक्की मतलब इमो मॉडर्न मान, मगर यह गलत फहमी यमो तो यह पर्जम तम अकिस गलत फहमी एक गलत फहमी पाल रहे वो अपने आप में, क्योंकि यम पन रूट्स करन ना फॉरगेट, जो जो अपने रूट्स को भूल जाएगा ना वो ना घर का रहेगा ना गार्ड का रहेगा। अच्छे मॉडर्नाइजेशन मीन्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ थॉट्स, मतलब अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपनी सोच को प्रोग्रेसिव बनाना, पॉजिटिव बनाना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लोगों के लिए, एक ह्यूमन राइट्स पे काम करना, मतलब इंसान को इंसान के लेवल पे समझना और इंसान को उसकी जो एबिलिटीज है उसकी जो सलाहियतें हैं उसको वो वैसा करने का मौका देना और टांग ना खींचना, मतलब यम गई अख प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मगर अस क्या सोचान अस सोचान कि पलव बदलावने सत या प्रोफेशन कुन जाए कह थो तथ सु कॉपी करने सत बसान सी सोसाइटी से तरक्की कर, मगर अस डिग्रेड ऑन मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज, क्या इस स्किल्ड आर्ट ना सू अल्लाह ताला सी तरफ कंस त आर्टिस्टस उस स्किल आहु इंसान पान ग्रेस्प कर क्या सून तेमस मन इनकलकेटेड, मतलब सू तेमस अल्लाह ताला ओर त्रोमुत क्या ना सू कूत थोत तेहतर अफजल बाक नश इतना वोनमो डॉक्टर इंजीनियर आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन और हर किसी प्रोफेशन का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए और आर्टिस्ट का इसलिए थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्या कि ये मतलब ये खूबी एक इंसानस मज एक अल्लाह ताला हन त्रम इसलिए गत अत ज्यादा पहमत वैल्यू आसुन तो अस क्या शु कोरमत अस उल्टो कोरमत अस छने ये कशीर मज आर्टस दितमत जह त सु वैल्यू यलने अ स्किल्स वैल्यू ही मिलो बे इमन इकोनॉमिक रिटर्न ही मिले क्या कि लुको त्रो मेजबान इस्तेमाल करिन अत मज अख मेजर फैक्टर ओस यम सात कश्मीरी पंडित माइग्रेट ते गई तिम अस वारिया ज्यादा पट विंकेस अस अख युहुंद अख फेस्टिवल छु आसन शिवरात्रि तत पट ओस यम मैक्सिमम मेजबान इस्तेमाल करन पनिन اتھ فیسٹِولس منٛز اوس یوٹِلایز گژھان. یعنی یِمن تہِ اوس اکھ, یُس مُسلمان بوے اوس یُس کٲم اوس کران تٔمِس تہِ اوس اکھ کاربار پکان. تِمن منٛز ٲسۍ یِم واریاہ زیادٕ, تِم ٲسۍ نا واریاہ زیادٕ ہیلتھ کانشیس لُکھ یِوان ماننہٕ, بیٚیہِ چھِ تِم ذہیٖن تہِ یِوان ماننہٕ, تہٕ تِمن ٲس پتہ اَمِچ ویلیوٗ کیاہ چھِ. اَسہِ کیاہ کٔر کٲم, اَسہِ ترٛوو پَنُن یہِ کَلچر, اَسہِ کوٚر شِفٹ ٹُو اَدر تھِنٛگس, ترٛام یا واٹ ایٚوَر, سُہ تہِ چھُ اِمپارٹنٛٹ, چلو ٹھیٖک چھُ, مگر یُس یِم یِہٕنٛز اہمیت چھِ, یہِ چھِنہٕ صرف کَلچرلی اَسہِ تہِ اَسہِ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ سٲنِس ریلِجَسلی تہِ مینشن. یہِ چھُ سۄنت یِمن بانن منٛز کھیوٚن, یہِ چھُ سۄنت یِم 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 چیٖز استعمال کَرٕنۍ. اَسہِ ترٛوو سُہ تہِ, ییٚلہِ یہِ مطلب اَسہِ یوٗز کَرُن ترٛوو, اِستعمال کَرُن ترٛوو, یعنی ڈِمانٛڈ گٔے کَم, تہٕ تِم کَپٲرۍ کٕنہَن. بیٚیہِ کٔر تِم یِمو مطلب یِم کرٛال کٲم ٲسۍ کَران یا کَران چھِ, تِمو کٔر اَکھ, مےٚ چھُ باسان تِمن کٔر اُنہوں اپنے ہُنر کی کَم ویلیوٗ کی. تِمن چھِنہٕ پَیی, بہٕ چھَس ہمیشہِ یہِ اَکھ کَتھ وَنان, یوٚتامَتھ نہٕ مطلب شیر کو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا وہ شیر ہے, وہ تب تک بلی کی طرح ہی رہے گا. تو یِمن کرٛالن چھَنہٕ پَیی, مطلب یِمن چھُ یوٗتاہ اہم یہ تحفہ, میں بولوں گی اوپر والے کی طرف سے, کیونکہ اگر آپ دیکھو گے ایک تو یہ سکل, دوسرا اچھا پھر یس تہ سینٹ صوفی چھِ میکسِمم درامٕتۍ, تُہۍ اگر تِہنٛز ہسٹری وٕچھو تِم ٲسۍ کرٛال, یعنی یہِ چھُ اکھ الگٕے کنیکشن, سول کنیکشن وِد دَ یوٗ نو ٹُو دَ ڈِواین ورلڈ. چلو سُہ پورشن چھُ الگ, بہٕ وَنہٕ یہِ اتھ پٮ۪ٹھ اکھ, سۄ ریسپیکٹ ٲس یِمن خٲطرٕ الگٕے, مگر یُس یہِ سوشل ٹیبوز اتھ سۭتۍ ایسوسیٹ گٔے, آبویسلی ینگ جنریشن کیازِ کٔر پریفر یہِ کرُن ییٚلہِ نہٕ اِکنامِک رِٹٲرنس تِتھ ٲسۍ. یعنی یِہنٛز سِکِل ٲسۍ اینہانس کرٕنۍ ٹُو دَ ماڈٲرنایزیشن, کہِ ییٚمہِ سۭتۍ یِم ماڈٲرن کِچنس میں, ماڈٲرن ہاوسز میں اڈیپٹ ہوتا, مطلب ڈِمانڈ انکریز ہوتی, تو تب جا کے پروڈکشن انکریز ہوتا, اور ان کا جو فائنینشلی اس میں ریٹرنس آتے وہ بہت زیادہ آتے, جو کہ آ رہے ورلڈ وائڈ, مگر کشیر کین چھنہ پتا کیا کہ یہ کوتا ایکسپینسو آرٹ چھُ, تہٕ یہ کوتا سکلفل آرٹ چھُ, یعنی اتھ منٛز کۭتیاہ سٹرانگ انٹرپرینرز ہیکن کریٹ گٔژھِتھ. پوٹری سٹوڈیو کانسیپٹ چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ, مطلب یُس مےٚ انٹروڈیوس کوٚر وۄنۍ, انشاء اللہ آسہِ برونٛٹھ کُن, تہٕ مگر انفارچُنیٹلی اتھ سۭتۍ چھِ اسی انجسٹس کٔرمٕژ. بیٚیہِ موسٹ امپارٹنٹلی اکھ یہِ بوٗز مےٚ فیکٹر کہِ کورِ ہیکن نہٕ کرٛال کٲم کٔرتھٕے, مطلب اگر بوزِ یہِ چھِ کرٛال کٲم کران, أمِس کُس دِی نیتھٕر, لڑکس کُس دِی نیتھٕر, تہٕ کورٮ۪ن ہِنٛز چھنہٕ کَتھٕے. تہٕ یہِ کوٚر مےٚ واریاہ زیادٕ ہِٹ کہِ کیازِ ہیکن نہٕ کورِ کرٛال کٲم کٔرِتھ. مطلب اکھ سِکِل, یہِ یوٗتاہ بیوٗٹِفُل سِکِل چھُ, اتھ منٛز کیاہ غلط کٲم چھِ یۄس نہٕ اکھ کوٗر ہیٚکہِ کٔرِتھ. سُہ یہِ جو میجر فیکٹٲرٕس ہے دیٹ وُمین کان ڈوٗ پوٹری, سوشل ٹیبوٗز, دَ اِکنامِک تھِنٛگس ایسوسیٹِڈ وِد اِٹ, اینڈ دَ سوسایٹی اِن اَ لارج اِز ریسپانسِبٕل فار اِٹس ڈاوُن فال. تو وِچ جو مجھے لگتا ہے کہِ انشاء اللہ ابھی تھوڑا سُدھار تو آیا ہے اور آ رہا ہے, اور انشاء اللہ یہ نہیں رہے گا.
جب تک ایک انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا یا اپنے پروفیشن کی قدر نہیں کرتا, تو لازماً دنیا اس کے پروفیشن کی یا اس کی قدر نہیں کرے گا. جیسا آپ نے کہا کہ پوٹرز جو ہے وہ اپنی قدر خود نہیں کرتے, اپنے کام کی قدر ان کو نہیں رہی ہے, تو الٹیمیٹلی لوگوں کی نظر میں بھی پوٹری کی اتنی زیادہ قدر نہیں, اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی ہے. میم اگر دیکھا جائے ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک جوتا پالش کرتا ہے, جو اس کی بھی ایک بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ہم لوگ کبھی اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی محلیں, پیسہ, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہیں کہ جی بالکل ہماری سوسائٹی میں چھوٹے سے چھوٹا پروفیشن جو ہے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے. مان لیں کہ آپ کسی کنونشن میں جا رہے ہیں, کسی میٹنگ میں, کہیں پہ بھی جہاں پہ 10 لوگ آپ سے بڑے یا آپ سے چھوٹے لیکن ویل سیوٹڈ ٹائی لگا کے آ رہے ہیں, تو میم آپ تب تک وہاں پہ فخر سے نہیں جا سکتے جب تک آپ کے جوتے چمچماتے نہ ہوں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے جوتے پالش کرانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ کافی سارے لوگ اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے پاس ٹائم نہ ہو, بہت زیادہ بزی شیڈیول ان کا رہتا ہے, وہ سڑک پہ چلتے چلتے کسی کابلر سے, کسی جوتے پالش کرنے والے سے اپنے جوتوں کو پالش کروا لیتے ہیں. جب وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے, تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو سر فخر سے اونچا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک جوتے پالش کرنے والے کا ہاتھ ہے. جب تک آپ کے جوتے گندے ہوں گے تو آپ کا مائنڈ وہیں پہ رہے گا کہ یار میرے جوتے کوئی دیکھنا نہیں چاہیے, میری بے عزتی ہو جائے گی. تو
اس میں میں آپ کو یہ ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کام, چاہے وہ مطلب آپ نے ایک دیکھا ہوگا جو یہ نالیاں صاف کرتے ہیں صبح صبح, या जो ड्रेन वगैरह जो हमारे ये जो होते हैं बहुत सारे ऑल ओवर प्लेसेस आप देखेंगे जो कूड़ा कचरा साफ करते हैं, मतलब अगर वो नहीं होते तो हम कैसे जिंदा रहते. ये जो हमारी दुनिया है इसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या जो भी चीज कायनात में ऊपर वाले ने बनाई है वो सोच समझ के बनाई है. हर किसी का अपना रोल है, हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. मतलब अगर एक चीज खत्म हो गई तो आप सोचिए इम्बैलेंस होता है, ठीक है. तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कायनात से नहीं लड़ सकते. हम जो अपनी सोच लेके आते हैं ना ये डिस्ट्रक्शन की सोच होती है. तो इसीलिए जो भी कोई भी काम करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता है, वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं इस दुनिया में. सो हमारी ये इंटरडिपेंडेंस है और हमें इस चीज को एक रियलाइजेशन करनी चाहिए कि हमारा किसी भी इंसान का हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरे इंसान को जज करे या उसको नीची नजर से देखे. मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो खुद एक नीचा इंसान है और वो खुद उसकी, चाहे वो फिर कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी डिग्रियां क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी दौलत क्यों ना हो, तो वो मेरी नजर में उससे नीचा कोई नहीं.
सही कहा आपने, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो आज की जनरेशन है, बंदो काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है इस जनरेशन में. आजकल के बच्चे, आजकल के लोग उस तरह से नहीं सोचते चीज़ों को जो आज से 5 साल या 10 साल पहले के लोग किया करते थे. ठीक है, कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से हर तरह की प्रॉब्लम कश्मीर ने फेस की है, कश्मीर के लोगों ने भी फेस की है. तो लोगों के अंदर डिप्रेशन आ जाती है, माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाता है जब एक कहते हैं कि कोई उम्मीद, कोई आसरा नहीं रहता कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे. खुदा पे तो खैर हमें यकीन बिल्कुल भी नहीं है, नाम का रखा हुआ है. तो फिर लोग जो है गलत काम करने लगते हैं, मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ट्रोल करना, ये सारा कुछ. तो मैम कश्मीर में खैर हमने जो पास्ट में नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोग अब जो है सपोर्ट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर इंडिविजुअली बात की जाए पर्सनल लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को तारीफ़ करते हैं. काफ़ी मोरल बूस्ट होता है एक इंसान के, एक जो आथर होता है, एक जो एक आर्टिस्ट होता है, उसको काफ़ी हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से, जो उसको पॉजिटिव फीडबैक आता है. मैम लेकिन उसके बावजूद एक सेगमेंट एक है कश्मीर के अंदर, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो बेचारे खुद तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते, वो कह लें कि लंगड़े होते हैं, वो इस रेस में बिल्कुल दौड़ ही नहीं सकते, वो सोचते भी नहीं है कि हम किसी रेस में दौड़ें, हम कोई आर्टिस्ट बने, कोई सिंगर बने, कुछ भी नहीं. कहेंगे कि भैया जी सिंगर बनना है, बोलो ना अस्तग़फ़िरुल्लाह, हौल वला कुव्वता गुनाह है, ऐसा है वैसा है, ठीक है मान लेते हैं, बिल्कुल हक बजानब है उनकी बात. तो कहीं पे कहना है कि कुछ लाइक कोई डेवलपमेंट का काम आ रहा है, सोशल वर्क है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है, या फिर स्टार्टअप्स हैं कश्मीर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं कश्मीर के अंदर, वहाँ पे भी वो लोग जो है अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके आते हैं. तो नटशल में उनकी जो नेगेटिविटी है वो देखने को मिलती है. मान लें कि आप करालकूर इंस्टाग्राम पे जब अपने पोस्ट शेयर करते हैं, या फिर अपना जो आपका फ़न है, काम है, जब आप शेयर करते हैं, तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव लोगों के पास भी आपके पोस्ट्स पहुंचते हैं जब कोई शेयर करता है. लेकिन नेगेटिविटी की बात अगर यहाँ पे की जाए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पोस्ट्स पे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार मतलब क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. अब आप करालकूर हैं कश्मीर की, बहुत फेमस हो चुके हैं आप इंस्टाग्राम पर अल्हम्दुलिल्लाह. तो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग आपको ट्रोल करते हैं? यार पॉजिटिव वाले लोगों की तो अच्छी बात है, उनकी तो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है और वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे. खैर अगर वो कोई बंदा डोनेट नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको फिज़िकली ला के कोई चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन उसका जो एक 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 वर्ड होता है उसकी तरफ से, वो भी बहुत माने रखता है. मैम आप हमें ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, आप कैसे फेस करते हो उस चीज़ को, कैसे डिफेंड करते हो, और कैसे वो कितना इम्पैक्ट, कितना असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे उन सब चीज़ों से?
देखिए पहले मैंने तो एक रीज़न से करालकूर अपना नाम रखा कि मैं एक पहचान दूँ इस सेक्टर को कि करालकूर से उस सेक्टर से बिलोंग करा, क्योंकि लोग कहते कास्ट से तो मैं नहीं हूँ कराल, लेकिन मैंने अपने नाम को खुद करालकूर इसलिए दिया कि एक मैसेज देने के लिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने मास्टर्स किया है, जिसके पास एक सरकारी नौकरी है, जो इंजीनियर है, जो एक हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है, ख्वाब देखते हैं. हालांकि मैं मानती हूँ कि ठीक है, एक नॉर्मल ठीक जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि है लाइफ में ऐसा रोजी रोटी दी है, बट इसको अल्टीमेटली जिंदगी में मानना चाहिए. मतलब हमें किसी इसी लेवल को एक आइडल नहीं बनाना चाहिए, हमारे को अपना विजन ब्रॉड रखना चाहिए, हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए दुनिया. मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में करने को. सो दैट्स व्हाई मैंने नाम रखा करालपुर. एक तो रिप्रेजेंटेशन, और हमेशा एक सोच लेके चली कि जब भी मैं पूरी दुनिया में जब मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगी कि यहाँ के पॉटर्स के साथ, यहाँ के करालों के साथ, जब मैं कुम्हारों के साथ जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी पॉटरी ऑफ कश्मीर थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये जब करालपुर गूंजेगा तो वहां पे पता चलेगा कि ये कश्मीर की पॉटरी है, और कश्मीर में जो पॉटर लड़कियां हैं उनको करालपुर कहा जाता है. और इस नाम से मैं भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वो सोचेगी कि नहीं, हम भी पॉटरी कर सकते हैं, जो कि हो रहा है. अब आप कह रहे हैं कि बींग कश्मीरी वुमन सोशल मीडिया पे आना, तो सोशल मीडिया पे खुद को एक्सपोज करना एक रीजन यही था, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को एक पॉपुलर नहीं देखते, फेम नहीं देखते या इज्जत नहीं देखते, तो कोई भी इंसान वो करने का सोचेगा भी नहीं. और मेरा जो मोटिव था है वो है कि यंग जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो, लड़कियां इन्वॉल्व हो, तो वो कैसे होती जब जिनको आज का प्लेटफॉर्म जिस तरीके से उनको वो अट्रैक्ट करेगा. आई हैव टू प्रेजेंट इन दैट वे, वरना पॉटरी तो वही है, ये तो हमारे कल्चरल और हेरिटेज का हिस्सा है ही है, स्किल्स तो वही है, टेक्निक्स तो वही है, सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन है, कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं. वो हमें यहाँ के पॉटर्स को मुझे सिखाने की जरूरत है, हमें वर्कशॉप्स कंडक्ट करने, वो तो होगा ही, लेकिन वो तो हमारी एल्डर जनरेशन बची हुई है, यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करने के लिए उन्हीं के वेज इन्वॉल्व करने हैं. सो दैट वॉज माई मेन मोटिव कि मैं सोशल मीडिया पे खुद मतलब आई वॉन्ट टू बी एवरीवेयर, ताकि लोग पॉटरी के बारे में पहले बात करना तो शुरू करें. जब क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी तब जाके यानी करालपुर करान क्या, व्हाट इज शी डूइंग, हाउ इज शी गेटिंग सो फेमस, इतना क्या है इसमें, यानी इस चीज में कुछ ऐसा तो है कि नेशनली इंटरनेशनली शी इज बीइंग अक्लेम्ड. क्योंकि इंटरनेशनली या नेशनली या लोकली जो भी जिन्होंने भी मतलब अप्रिशिएट किया या अवार्ड्स दिए, बेवकूफ लोग तो नहीं बैठे हुए हैं, यानी इसमें कुछ ऐसा तो है, स्किल तो है कुछ ऐसा. तो पहला तो वो ये एक मोटिवेशन है, इसीलिए मुझे ट्रॉल्स इफेक्ट नहीं करते, वन रीजन. दूसरा, इतने ज्यादा ट्रॉल्स मतलब लोग समझते हैं कि अगर इंसान है, अगर ये एक काम करता है तो हमें बस इसको यही एक काम करते हुए देखना है. नहीं, मैं ये मैसेज भी मेरे करालपुर बनने में एक ये है कि लड़की जो है एज अ वुमन जो एक सोशली चैलेंज सोसाइटी से आई है, जिसने बहुत कुछ फेस किया हुआ है पर्सनल लाइफ में, जो कि बहुत सारी औरतों के साथ यहाँ पे होता है, और वो फिर सोचती है कि दैट एंड ऑफ द लाइफ इज जस्ट एक मतलब कब खत्म हो जाए जिंदगी, या बस अब ऐसे ही जीना है और कोई होप नहीं है, तो उनको एक उनकी एक रीजन, एक होप देने के लिए कि नहीं, लाइफ में सिर्फ इतना ही नहीं है, वी कैन डू मच बेटर, वी कैन डू मेनी अदर थिंग्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ पॉटरी, आपके पास और भी कोई स्किल हो सकता है जो आप ढूंढ सकते हैं. तो इसमें जो आपको फिर एक तो आप अपनी सोसाइटी से लड़के आते हैं, दूसरा फिर जब आप सोशल मीडिया पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि फोन तो पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसको फोन इस्तेमाल करना आता होगा तो उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी. तो जब आपको ये पढ़े लिखे लोग ट्रॉल करते हैं, आई बिलीव इट इज सोशल मीडिया एथिक्स मिसिंग है यहाँ के लोगों में. They don't know what social media ethics is, that we can't bully or harass or troll anybody on social media. You don't have any right, it is illegal. तो उसकी अवेयरनेस में भी इंशाल्लाह हो जाए, बिकॉज जब हम सामने आएंगे, जब इन चीज़ों पे बातचीत होगी, जब मैसेजेस जाएगी, मे बी एक पॉजिटिव ऑरा बने, मे बी लोग एक्सेप्टेंस लेवल, जब बार बार कुछ कोई चीज़ दिखती है तब जाके एक एक्सेप्टेंस लेवल बनती है, और तब जाके दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बनता है. और वो एक मेरा और एक मोटिवेशन है कि मे बी आई कैन डील विद दीज ट्रॉल्स इन अ राइट वे, सो दैट जो कुछ लड़कियां हैं जो डरती है इन ट्रॉल्स की वजह से, वो शायद अपना स्किल, अपना टैलेंट नहीं शो कर पाती, या वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती है, या वो अपनी बात सामने नहीं रखना चाहती है. जब वो देखेंगे नहीं एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, तो उनमें भी एक करेज आएगा कि नहीं, हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं. और मैंने एक बहुत बेकार सी चीज देखी है कि लड़कियां ज्यादा ट्रॉल करती है मुझे, एज कम्पेयर टू लड़के भी करते हैं नो डाउट, बट कोई मजहब के नाम पे ट्रॉल करता है, कोई सोसाइटी के नाम पे ट्रॉल करता है, कोई इज्जत के नाम पे ट्रॉल करता है. मतलब मैंने देखा है जो लड़कियां अलग अलग फील्ड्स में है, उनको जिस उनको कहीं लगता है अच्छा इसमें ये कमी है, तो उसको मतलब वो कमी शायद होती नहीं है, लेकिन उनके नजर में होती है. मेंटल लेवल हर किसी का है जो भी, और जहाँ पे मैं ट्रॉलर्स को देखती हूँ, मैं लिटरली आप मानेंगे नहीं, मुझे हंसी आ रही होती है कि मतलब क्या मेंटल लेवल, क्या कहाँ से आते हैं ये लोग, کیوں اس لیول ایسی سوچ کیسے ہو سکتی ہے کسی انسان کی کہ آپ کچھ بھی اٹھا کے جو بھی آپ کے دماغ میں آیا اور آپ کو آپ خود کو ایک اتھارٹی سمجھتے ہو اور وہ آپ سوشل میڈیا پہ ایز اے کمنٹ یا ایز اے پوسٹ ڈال دو جسٹ ٹو ٹرول دا پرسن جسٹ ٹو مینٹلی ہراس دا پرسن کیونکہ اور آپ اور ان انسانوں کو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کیونکہ اسی پہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو کیا پتا بھی ہے وہ کتنا جد و جہد کر کے سامنے ایک فرنٹ فٹ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کتنے سیکریفائسز کیے ہوتے ہیں اور کیا ان کو حق نہیں ہے کہ کیا ایک لڑکی کو حق نہیں ہے اچھے کپڑے پہن کے سامنے آنا کیا ایک لڑکی کو حق نہیں ہے کہ جو اس میں خوبی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ سامنے لائے کیا صرف اگر لڑکی آپ کو دکھ رہی ہے سپوز میں دکھ رہی ہوں کہ یہ پوٹری کے نام سے پہچانی جاتی ہے کرالپور کیا کرالپور پوٹری کے علاوہ اور باقی کام نہیں کر سکتی کرالپور پوٹری کے علاوہ انجینئر بھی ہے کرالپور پوٹری اور انجینئر کے علاوہ ایک بیٹی بھی ہے دوست بھی ہے ایک سوشل اینیمل بھی ہے ہیومن از اے سوشل اینیمل سوشلائز بھی کرنا ہے لوگوں سے بھی ملنا ہے سو ساری 24 گھنٹے میں الگ الگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس میں کچھ ایکٹیویٹیز شاید آپ پبلکلی دکھا سکتے ہیں تو کیا ہم کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے دوسروں کو انسپائر کرے مطلب آپ کو پتہ ہے میں آئی یوزولی ویئر ٹریڈیشنل کلوتھس اور یہ مجھے بچپن سے شوق ہے اور آئی آلویز بلیو ان پروموٹنگ دا لوکل آرٹسٹ تو جو ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں وہ لوکل آرٹیزنز بناتے ہیں جو بہت بہت پیار سے بنے ہوتے ہیں تو ان کو آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ جو پہن رہے ہیں ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ بریڈ ارننگ ان کے لیے نہیں ہوتی ہے میں نے کہا نا ہم سوسائٹی ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے تو کیا ان کی پروموشن اس سے ہوتی ہے ان کے کسٹمرز انکریز ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی تو پیسہ آتا ہے جو نا کشر بوئس یا بین ہی گسا سو جتنا نا اکس پان ریسپانسبلٹی کہ بے مطلب یہ کیا چھنے لکن فکری طرح کہ یہ کہا انسان کن چیزس فیمس چھو گسا یا تمہیں اپریسیشن ملا پچ سو انڈورس کران وارین چیزن یس سو استعمال چھو کران فار ایگزامپل جب دھونی بنا میں ان کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کر رہی ہوں میں تو ابھی کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل تو جب وہ فیمس بنا اس کے بعد اس کو ایڈ مطلب اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا نا مطلب الگ الگ ویز میں پریزنٹ کیا یا وراٹ کوہلی یا کسی کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ کسی برانڈ کے بارے میں بات کرے یا کسی چیز کے بارے میں بات کرے وہ کیوں اس کو وہ آپشن دیتے ہیں کیونکہ اس کی بات کی ایک ویلیو ہے یعنی اس کو لوگ ایڈمائر کرتے ہیں سو اس کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہی بات پہنچائے جس میں وہ خود بلیو کرتا ہے اینڈ دیٹس واٹ آئی بلیو مطلب میں جو چیز استعمال کروں یا جن آئیڈیالوجیز کو میں مطلب فالو کرتی ہوں یا جو جس لائف کو میں نے جیا ہے میں پریکٹیکلٹی میں بہت بلیو کرتی ہوں جس وجہ سے کرالپور بنی اور جو ریزنز ہے آگے بڑھنے کے وہ میں جتنا ہو سکے سوشلی لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ مجھ سے بھی بہتر جو ہو وہ سامنے آئے مجھ سے بہت بہتر لوگ ہیں جو ابھی پردے کے پیچھے ہیں تاکہ ان کو ایک موٹیویشن ملے اور وہ لائف میں کچھ اچیو کرے اور وہ لائف میں آگے بڑھے اور ان میں کانفیڈنس لیول آئے تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ میری ایک موٹیویشن بنتی ہے اور جس وجہ سے میں یہ ٹرولز کو ایزیلی ہینڈل کر سکتی ہوں اور جو مجھے مینٹلی افیکٹ نہیں کرتے
کوشو ٹاکس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ سننے والوں کے لیے انسپریشنل ہوں وہ سبھی لوگ جو ہمارے شوز پہ آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کہانیاں لوگوں تک پہنچائیں اور کافی ساری چیزیں جو ان کی زندگی میں انہوں نے سہی ہیں جن سے انہوں نے اوور کم کر کے آج وہ ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں ہماری جنریشن میں سننے والے جو ہیں وہ ان سے موٹیویٹ ہوں انسپائر ہوں اور انہیں لگے کہ نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں میم آپ ایک ہیرو ہیں کیونکہ آپ نے جیسے پہلے کہا کہ انفارچونیٹلی آپ کو ایکیوٹ ڈپریشن کی پرابلم تھی تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایکیوٹ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں ہمیں میم کہ آپ نے کافی زیادہ اسٹرگل کیا ہم نے آپ کی اسٹوریز پڑھی اور نیوز پیپر میں جب آپ کے بارے میں ہم نے آرٹیکلس پڑھے تو ایک ایسا انسان جس کو ایک ڈپریشن کی بیماری پڑی ہوئی ہے اور وہ اچانک سے اتنا ایک اس کے پاس اتنا فیم ہوتا ہے اتنا ایک رسپیکٹ اس کو ملتی ہے اور ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے رسپیکٹ تو انسان چلو لے لیتا ہے کہیں سے لیکن آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ نے وہ ٹیلنٹ اپنا شو کیا لوگوں کے پاس لے کے آئے دنیا تک لے کے آئے خاص کر کشمیر کے اندر اس ٹائم پہ آج کل جو بھی انسٹاگرام کے اچھے خاصے یوزرز ہیں وہ کرالپور کو ڈیفینیٹلی جانتے ہی ہوں گے تو میم سننے والوں کے لیے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس جو ایکیوٹ ڈپریشن کی آپ کو بیماری تھی اس سے آپ نے کیسے اوور کم کیا اور آج آپ جس اسٹیج پہ ہیں اپنی اسٹوری بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں اس سے انسپائر ہوں
आई होप मैं डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि ये कैसे जज किया जाता है, बट आई एम होपफुल कि मैं बाहर आ चुकी हूँ. बट हाँ, एक फेज ऐसा था डिप्रेशन, अल्लाह ना करे आप कभी फेस करे और आपको नहीं पता है तो अल्लाह आपको हमेशा महरूम रखे इस चीज़ से. बट ये एक ऐसा फेज होता है जब इंसान चाहता है कि वो उठे ही ना, जब इंसान चाहता है वो किसी से मिले ना, उसको जो लोग उसको बहुत पसंद होते हैं उनसे भी वो नफरत करता है, वो कोई काम ही नहीं करना चाहता है. इतना मतलब एंजाइटी ऐसी होती है कि जैसे एक पहाड़ सीने पे रखा हुआ है, सांस लेना मुश्किल होता है, जो घड़ी का टिक 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 होता है वो सुनते सुनते सुबह होती है, जो अच्छा लगता है मतलब जो जिंदगी में बहुत पसंद होता है वो अचानक से गंदा लगने लगता है, बिन वजह गुस्सा आता है, बिन वजह रोना, इरिटेट होना, मतलब ऐसी ऐसी एक फ्रस्ट्रेट कहते हैं ना किसी को, फ्रस्ट्रेट छुगुम होते, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल एक आना और इंसान को खुद भी नहीं पता होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे सीने पे जो ये पहाड़ जैसा मुझे वजन लग रहा है ये क्यों लग रहा है, मुझे क्यों नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, मैं जीने मतलब यहाँ तक ऐसा सोचना कि इंसान चाहता है मैं खुद को मार डालूं, और जो कि मैंने भी कोशिश की कि काश मेरी जिंदगी किस तरीके से खत्म हो जाए, और ये भी एक वक्त था. फिर मुझे उस स्टेज पे लगा कि नहीं, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है, मुझे मतलब जो इसके लिए ऐप जो सही हेल्प है वो डॉक्टर है, तो आई शुड कंसल्ट समवन जिससे मुझे एक हेल्प मिले. मेंटल हेल्थ पे उतना बातचीत होता नहीं था, अब तो होता है, अभी भी उतना नहीं होता है, बट स्टिल इट इज़ नाउ एट अ गुड लेवल, बट तब भी टैबूज अभी भी टैबूज एसोसिएटेड है, तो तब तो बहुत ही थे, मैं बात कर रही हूँ 4-5 साल पहले की, तो इतना ज़्यादा था. बट आई थॉट कि नहीं मुझे साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प चाहिए, सो आई कंसल्टेड बोथ, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, डिफरेंट मेडिकेशंस हुई, बहुत टाइम तक मेडिकेशन पे रही, फिर रियलाइज हुआ मेडिकेशन सिर्फ मेरा मूड ऑल्टर कर रही है, मतलब मुझे बेहोश जैसा कर रही है, मतलब एक ऐसा कि आपकी आप उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मे बी ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं इन मेडिकेशन से कि आप उतनी जब आप सोचेंगे ही नहीं तो आप महसूस ही नहीं कुछ करेंगे तो फिर कैसे ये सब चीज़ें आप फील करेंगे, इट इज़ ऑल अप टू द माइंड. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लेज़ी, मतलब उठने का मन, ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मेरी मेडिकेशन मेरी डोजेज बहुत ज़्यादा हाई थी. फिर मैं लेकिन एक वक्त आया कि मैं खुद आ गई इन दवाइयों से तंग, क्यों, बिकॉज मैं अपनी जो मेरी मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज थी या जो मेरी क्रिएटिविटी थी कुछ भी चीज़ में वो मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरे ये हेल्पफुल नहीं हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट थी मेरी फ्रेंड है जिससे जो मुझे काउंसलिंग भी कर रही थी, एंड इवेंचुअली आई थॉट नो आई हैव टू क्विट ऑन मेडिकेशन, और धीरे धीरे मैंने क्विट करा और उसी फेज में मैंने पॉटरी को चुना और जिसमें मैं इन्वॉल्व हुई, और पॉटरी मेरे लिए एक सेवियर बन के आई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, दो आई स्टिल फील एंजाइटी एट मेनी सिचुएशंस, या जब इनफैक्ट जब सोशल मीडिया पे ट्रॉल होता है यू वोंट बिलीव, मुझे एंजाइटी हो जाती है कि लोग क्यों ऐसा करें, नॉट कि मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मुझे आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या है, और मुझे ये इस पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है, तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, आपको सिर्फ किसी का दिल नहीं दुखाना है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. मगर जब ये ट्रॉल्स करते हैं मुझे तब ये होता था कि वो कोई लड़की या वो कोई बच्चा या वो कोई लड़का जो आना चाहे कुछ किसी, जिसको अभी उतना कॉन्फिडेंस लेवल ना हो, जो अभी एक बडिंग आर्टिस्ट हो, वो ये सब देख के नहीं सोचता होगा कि नहीं अगर मैं आया मुझे ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूँगा, तो आई फील फॉर देम, और उस चीज़ से मुझे बहुत अभी भी कभी एनजाइटी होती है जिससे मुझे नींद नहीं आती है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई हैव ओवरकम अ लॉट, और जो सुसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट्स टू डू दैट वाज रियली रॉन्ग विच आई हैव डन टू माई सेल्फ, लेकिन तब भी मैंने एक ये फिर एक डिसीजन लिया कि नई जिंदगी एक बार मिलती है और ऊपर वाले ने दी है, और तब एक डर लगता था साइमा एटलीस्ट ऐसे तो मौका है कि ऊपर वाले से माफ़ी मांगो और शायद मे भी मिल जाए, वैसे तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है, तो ये डर मुझे एक आप डर को हो या फेथ को हो इस चीज़ से एक ये मिला कि मुझे ये हरकत नहीं करनी है, एंड और एक रीज़न जो मोटिवेशन मिली कि अब तो दूसरों के लिए जीना है, मतलब क्योंकि जब मैंने इन पॉटर्स की लाइफ देखी जो इनके साथ हुआ है और जो इनके साथ हो रहा है, तो इनको एक पहचान तो दिलानी है, इनके रिवाइवल के लिए काम तो करना है, तो ये एक मेरा लाइफ का मिशन बना जिसने मुझे बहुत हेल्प किया और जिसकी वजह से मुझे अब जो मेरे साथ हादसात हुए लाइफ में, मेरे साथ बहुत कुछ, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, आई वॉज फिजिकली असोल्टेड, आई वॉज मेंटली हरास्ड, आई वॉज बॉडी शेम्ड, आई वॉज बुलीड, मतलब आई एम डस्की कम्प्लेक्शन है मेरा, आई डोंट नो ये कशिर सिर्फ वन या प्रोन तो ना तो करह बाकी चुन कहीं एग्जिस्ट करा तो कशिर चु कंसिडर करा प्रोन गो खूबसूरत मतलब और एक लड़की जो होती है उसकी ये जेनेटिक फैक्टर है कि लड़की हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती है एंड शी लाइक्स टू बी प्रेज्ड, शी लाइक्स कि उसको जब कहते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल और यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग एडोरेबल, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है. तो मैं भी एक लड़की ही हूँ, मतलब इन द प्रोसेस ग्रो कर रही थी. एंड व्हेन आई वाज बॉडी शेम्ड, मतलब चक्रहीन, पतली हो, मतलब हाउ यू वॉक, मैं थोड़ा टेढ़ा चलती हूँ एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई लव द वे आई एम, क्योंकि मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है द वे आई एम, उससे मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल, मैं खुद को कैसे कैरी करती हूँ दैट मैटर्स, और दूसरों के ओपिनियन मेरे लिए डेफिनेटली मैटर नहीं करते. तो जब मेरे कलर को लेके, तो पहले तो मैं बहुत ही होती थी, मतलब कौन सी क्रीम से गोरा होता है, कौन से होम रेमेडीज है जिससे आप फेयर हो सकते हैं, कौन से होम रेमेडीज है जिससे आप और खूबसूरत लग सकते हैं. देन आई वन डे आई टुक अ पॉज एंड आई वॉज लाइक, साइमा व्हाट द हेल आर यू डूइंग टू योर सेल्फ, मतलब इतना क्या है यार तुम्हें ऊपर वाले ने. और ये भी मुझे पॉटरी ने सिखाया, क्योंकि जब मैं कोई चीज बनाती हूँ आई लव दैट पीस, चाहे वो सामने वाले के लिए इम्परफेक्ट दिखता हो या सामने वाले को शायद पसंद भी ना आए, मगर मैंने उसमें इतनी मेहनत दी होती है ना और इतने प्यार से बनाया होता है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब आता है. और ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो उसने मुझे कितने प्यार से बनाया होगा, क्योंकि सब जगह ये कहा जाता है और ये सुना है और इस पर बिलीव हम फेथ ही करते हैं कि ऊपर वाला आपको अपनी माँ से 70-70 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है. तो आप इमेजिन, जब मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, शी ऑलवेज टेल्स मी चकवारी असल बासा अधवन क्या इतना अच्छा से अच्छा किस असल, तो इमेजिन उस ऊपर वाले ने जिसने मुझे बनाया, जब मैं अपने बनाई हुई चीज से इतना प्यार करती हूँ तो वो मुझसे कितना प्यार करते होंगे. और मैं जब अपनी चीज पे कोई नुकता चीनी करता है या जो मैंने बनाई होती है मुझे जब वो पसंद नहीं है, तो अगर मैं खुद के साथ ऐसा करूँ तो उसको नहीं, उनको मतलब ऊपर वाले को नहीं बुरा लगता होगा कि हाउ शी इज टॉकिंग नो अबाउट हरसेल्फ लाइक दिस जब मैंने ये चीज बनाई है. मतलब हमें तो उस पर अल्टीमेट फखर होना चाहिए ना कि उसने हमें जिसमें भी जिसको भी जैसा बनाया, यानी ये उसकी क्रिएटिविटी है, ही इज एन आर्टिस्ट, तो ये उसका आर्ट है, हमें उसके आर्ट को कितना प्यार करना चाहिए. सो एक ये मुझे पॉटरी से मिला और इन इस थॉट प्रोसेस से मुझे बहुत हेल्प मिला कि मैं इस डिप्रेशन को कूप अप कर पाऊं. और इसलिए भी मैं, ये भी एक रीजन है कि सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स होती हैं, सर्वाइवर्स मैं कहूँगी, जो फाइनली या तो सबर के नाम पे पेशेंस रख रही हैं कि सोसाइटी के नाम पे या माँ बाप के नाम पे या फैमिली के नाम पे, तो इवेंचुअली एक मैसेज जाए कि नहीं, लाइफ इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग ऑन नो विद दोज पीपल हु डोंट वैल्यू यू, हु डोंट रिस्पेक्ट यू. पैसा आप इथिकली कहीं से भी कमा सकते हैं अगर आपके पास हुनर हो, पैसों की वजह से आप डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट बने. और वंस यू आर इंडिपेंडेंट तो लिव विद द फैमिली और विद अ पर्सन फॉर रेस्पेक्ट, जस्ट एक रेस्पेक्ट रीजन होना चाहिए. प्यार पैसा ये सब कुछ बाद में मिले जाएगा. जो इंसान आपकी इज्जत करेगा उसी इंसान के साथ आपको अपना सोशल सर्कल भी रखना चाहिए, उसी इंसान के साथ आपको अपनी जिंदगी भी स्पेंड करनी चाहिए. सो दीज आर माय रियल फैक्टर्स ऑफ फ्रॉम माय लाइफ, इट इज दीज आर द पेजेस फ्रॉम माय लाइफ. सो इसीलिए मैं इसी पे बिलीव करती हूँ, इन्हीं पे चलती हूँ और इन्हीं पे कंटिन्यू करूंगी.
हम नोटिस करते हैं कि काफी न्यूज़पेपर में बंदो बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है, लड़की भी लड़के भी, एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बावजूद लोग जो है अपनी ज़िंदगी जो है वेस्ट कर लेते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, एक अफसोस की बात है. लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, अल्लाह बचाए सब लोगों को, अल्लाह ताला सब बीमारियों से सब लोगों को बचाए, लेकिन जो आपका आपने कहा कि एक्यूट डिप्रेशन से जिस तरह से आपने ओवरकम किया है और आज जो एक कराल कुर बन के आप दुनिया के सामने आई हैं, इट्स रियली इंस्पिरेशनल. जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इस टाइम पे जो जो लोग सोच रहे हैं बैठ बैठ के कि यार करूँ तो करूँ क्या, मैं तो बस सुसाइड का ऑप्शन आ रहा है. सो आई होप कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दोज पीपल कि भैया सुसाइड मत करो. मैम इसके अलावा आपने ये कहा कि अपनी रूह की सुने, इंडिपेंडेंट रहें, खुद कमाएं, खुद करें, ऑल दैट थिंग. मैम कश्मीर के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक मसला बन जाता है. एक इंसान कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, दूसरे लोगों का जहन एक इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है. मान लें कि इस वक्त आप मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे हैं जिन्हें मेरी अच्छाई दिखती है. अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, मतलब कि आप में अच्छाई देखने वाली वो विजन नहीं है, वो ताकत नहीं है. हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट, और वो भी कश्मीर के अंदर. तो बाहर के जो लोग हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो शाम के टाइम 2 घंटे 4 घंटे जो है नाइट शिफ्ट लगा के, या फिर जिसे हम कहते हैं वो शिफ्ट कर रहा है. बाहर के स्टेट्स की बात की जाए इंडिया के अंदर, या फिर इवन दो बाहर की कंट्रीज़ की बात की जाए, जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड वगैरह, US वगैरह, हर जगह पे बच्चे जो कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं वो कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते. तो वहाँ से वो सीख लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है. जब एक बंदा पैसा कमाता है तब उसको खर्चते टाइम पे वो पैसे निकालने में दिक्कत होती है. लेकिन एक आदमी जब उसने कुछ भी नहीं कमाया, उसके पास अगर 10 लाख 10 करोड़ भी होंगे जेब में, वो उसको कागज़ दिखते हैं. और एक्चुअली होते भी उसके लिए वो कागज़ ही, क्योंकि उसके पास उसका कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन एक बच्चा जब कोई बीटेक कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, शाम के टाइम वो 2 घंटे मेहनत करके जब पैसे कमाता है, उसको कदर आ जाती है कि यार पैसे मेरे से हैं, उनकी कमाई है. तो वो फ्यूचर में जब वो बड़ा बनता है तो फिर डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि उसको पैसे का वैल्यू समझ होता है, पैसे कैसे कमाया जाता है और पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है. मैम अब हमें यह बताएं कि आप कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, इन्हें आप कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप खुद से काम करें, खुद से कमाएं, लड़कों पे या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें. मैम अब हमें यह बताएं कि कश्मीर में एक औरत के लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है इंडिपेंडेंट होना, खुद से कमाना, खुद से सारा कुछ अपना लाइफ को सेटल करना, एक ट्रैक पर लेके जाना.
ये ईजी नहीं है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. देखिए मतलब ये 2021 चल रहा है, 2021 में भी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं. मतलब अभी भी अगर हम बेसिक जो एजुकेशन है उसके लिए बातें करेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, एजुकेशन तो है ही, जैसे खाना पीना ज़रूरी है, पढ़ाई तो वैसे ही ज़रूरी है. इट इज़ नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, मतलब जैसे हवा पानी ये ज़रूरत है, वैसे ही लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अब बहुत हद तक लोगों ने ये समझा है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए. लेकिन ये लड़कियों को ज़रूरी और घर वालों को ये समझना चाहिए कि उनको लड़की को इंडिपेंडेंट देने का बिल्कुल वो एनवायरनमेंट देना चाहिए, बिकॉज ये उसका लीगली और शरीयतन भी हक है. ये सिर्फ सोसाइटल या लीगल हक नहीं है, ये उसका रिलीजियस हक भी है. मैं मानती हूँ जो भी मजहब है या जो भी सोसाइटी है वो इस चीज से डिनाई नहीं करेगी कि ये हक उसको ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि ऊपर वाले ने दो जेंडर्स, मतलब ऊपर वाले ने इंसान बनाया, उसमें जेंडर बनाए, ठीक है. तो उसमें हर किसी की अपनी अपनी सहल मतलब एबिलिटीज डाली. मर्द कोई काम कर सकता है, औरत कोई काम कर सकती है, और जो अदर जेंडर्स है वो कोई और काम कर सकते हैं. लेकिन हर किसी में उसने कोई स्किल तो डाला ना, तो ऐसा नहीं है ना कि उसने एक इंसान को सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज के लिए रखा है. तो वो हमें मतलब आसान, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे इंसान ही इंसान का दुश्मन है. क्योंकि अगर देखूं तो लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता है, और जो कि मजबूर रहती हैं फिर सोशल या डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल हरासमेंट्स में रहने, या फिजिकल वायलेंस घर में होती है या ससुराल में होती है या कहीं पे भी होती है, वो मजबूर होती है वो फेस करने के लिए, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है. तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनको अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको उसको उस लायक बनाना है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. और एक लड़की को भी खुद से पहले से ही सोचना है, जब से वो बालिंग होती है. जब हम बालिंग होते हैं तो जब हमें शादी करने का एक राइट मिल जाता है कि ये अपना जो है लाइफ पार्टनर डिसाइड कर सकती है, तो वो लड़की क्यों, जब वो ये डिसाइड कर सकती है कि किचन में कौन बर्तन लगेंगे, घर में कौन पर्दे लगेंगे, कपड़े कौन से लगेंगे, खाने में कितने मसाले डलेंगे, जब वो ये सब डिसाइड कर सकती है, जब उसके उसके पास ये एबिलिटीज है सोचने की, तो क्या वो ये नहीं उस एज से सोच सकती है कि वो इंडिपेंडेंट कैसे रहे, उसको कैसे वेज एंड मींस बनाने हैं. आज तो और इतना सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास फोन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% पॉपुलेशन, बट मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात भी नहीं करूंगी, बट है जहां पे लड़कियों के पास एक्सेस है वो प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकती है, लीगल एंड इथिकल प्लेटफॉर्म्स, जहां पे एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं ये तो सोचे कि हमें अपने हाथ से कमाना है, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बट मैं कह रही हूँ कि जो लोग की नजर में होता है कि ये जी छोटा काम है, अगर वो भी कहे कहीं किसी कहीं ना कहीं से उनको शुरुआत तो करनी है, पहले अपने जहन से, अपने थॉट प्रोसेस से शुरुआत करनी है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरा, इट इज नॉट ईजी, जैसे आपने कहा, ये मैं मानती हूँ, और पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल आसान नहीं है, और आसान इसलिए भी नहीं है, बहुत सारी लड़की ये सोचती है कि फिर क्या करूंगी, लोग क्या बात करेंगे, तो अगर कुछ करना है जिंदगी में तो फिर इन चीजों के लिए तो मुझे लगता है कि सबको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि औरत जो है, एक लड़की जो है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ये बहुत पहले समझ जाती है, कुछ बाद में समझती है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ इस दुनिया से चली भी जाती है तब भी उनको ये नहीं समझ आता कि वो उनका मतलब दर्जा क्या था और उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, सो वो अनफॉर्चुनेट होता है।
मैम थैंक यू सो मच, आप कौशल टॉक्स पॉडकास्ट पे आए, आपने हमसे ढेर सारी बातें की, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा पॉडकास्ट सुनने वालों को पसंद आएगा और लोग इसे शेयर भी करेंगे, वो सब लोग जिन्हें छोटे मोटे मसले हैं या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग हमारा आज का पॉडकास्ट सुन के, या फिर साइमा शफ़ी जिन्हें कि एक्यूट डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स थी, वो आज साइमा शफ़ी से, एक इंजीनियर साइमा शफ़ी और एक करालकूर, एक पोर्टर हैं, तो लोग डेफिनेटली इस चीज़ से इंस्पायर होंगे और वो लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के सोचेंगे। मैम आखिर पे हमारे सुनने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं?
पहले तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट आप ज़रूर सुने, एंड मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और ज़रूर ये शेयर करें कोशर टॉक्स का, मुझे बहुत मतलब आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा इनिशिएटिव कश्मीर में है जहाँ पे आपके रियल थॉट्स को कैप्चर किया जाता है थ्रू योर वॉइस, एंड इट कैन सर्वाइव इवन यू आर नोवेयर इन द वर्ल्ड, जब मैं इस दुनिया में नहीं भी होंगी तब भी करालकूर की बातें सुनी जाएंगी, तो थैंक यू कोशर टॉक्स फॉर दैट। दूसरा मैं ये कहूँगी, मैसेज जो मैं देना चाहूँगी, सबसे पहले मैसेज तो मैं हमेशा ये देना चाहती हूँ कि लड़की भी करालकूम कर सकती है, लड़की भी पॉटर हो सकती है, सो जब मैं पॉटरी कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सो कम फॉरवर्ड। और मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी से मैंने ये सीखा है कि एक वक्त ऐसा होता है कि आप शायद जीना नहीं चाहते हैं, आपको शायद बहुत सारे गीले तकिए बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आपको शायद पूरी रात रोना पड़ेगा, शायद आपको बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, शायद आपको हकारत की नज़र से देखा जाएगा, शायद आपको कोई हाथ भी उठाएगा, शायद आपको एक बहुत बुरा भला कहा जाएगा, शायद आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि उसके बाद भी ज़िंदगी जी जा सकती है, और उसके बाद भी वो सब अचीव किया जा सकता है जो सिर्फ आपने शायद सपने देखे होंगे, और जो आपको लगे कि शायद ये हकीकत ना हो, लेकिन सिर्फ वो सपने जो आपको सोने ना दे, वो सपने नहीं जो आप नींद करते हैं तब देखते हैं, वो सपने जो आपको हमेशा जगा के रखे, और वो सब चीज़ें अचीव हो सकती हैं, और आपको पूरी दुनिया में मतलब उस चीज़ के लिए जाना जाएगा। और ये मैं कोई किताबी कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी साइमा शफ़ी करालकूर ने जी है, जो साइमा शफ़ी जिसको माँ बाप ने नाम दिया, जिसने करालकूर खुद को नाम दिया, अपनी पहचान दी, और जो भी मैंने ये आपको चीज़ें बताई ये उसकी ज़िंदगी में हुई हैं और शायद हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक सपना लेके है कि दुनिया में कुछ ऐसा करके जाना है कि दुनिया के लोगों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हम कितने, हमारी वजह से, देने वाला ऊपर वाला है लेकिन हम जरिया हर बहुतों के लिए आए हुए हैं, ये हमें रियलाइज करना है, उस ऊपर वाले ने अगर हमें भेजा है तो हम उसकी मखलूकात के लिए क्या करके जा रहे हैं, तो इस सोच के साथ अगर आप जियेंगे तो शायद आप, क्योंकि एट द एंड हमें उस मिट्टी में ही जाना है, तो शायद एक सुकून की नींद आखिर में मिले। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक हम उस मिट्टी में ना जाए तब तक हमें सीखना है एक दूसरे से, तो सीखते रहे और एक दूसरे के हमेशा सहारा बने, ना कि उनको किसी चीज में धकेले। और हमेशा याद रखे कि स्माइलिंग फेसेस आर मतलब ये जो आपको दिखते हैं हंसी खुशी वाले चेहरे, ये ज़रूरी नहीं है ये बहुत ज़्यादा खुश हो और इनकी ज़िंदगी परफेक्ट हो, उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है, बहुत सारे ऐसे गम होते हैं जो वो छुपा रहे होते हैं, तो मेहरबानी करके अगर आप उनके लिए कोई अच्छा ना सोचे या अच्छी बात ना करें तो एटलीस्ट बुरा भी ना करें, ना बुरी बात करें। शुक्रिया।